रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोताओं, आज आप कुरान मजीद के सूरह निसा की 58वीं और 59वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। तिलावत का श्रेय प्राप्त किया है कारी शहात मोहम्मद अनवर ने।
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا سميعا بصيرا
جميل
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العلي العظيم
الله کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ निसंदेह ईश्वर तुम्हें आदेश देता है कि अमानतों को उनके मालिकों को लौटा दो, और जब कभी लोगों के बीच फैसला करो तो न्याय से फैसला करो। निसंदेह ईश्वर तुम्हें अच्छे उपदेश देता है, निश्चित रूप से वो सुनने और देखने वाला है। हे ईमान वालों, ईश्वर का आज्ञा पालन करो तथा पैगंबर और स्वयं तुम में से ईश्वर द्वारा निर्धारित लोगों का आज्ञा पालन करो। यदि किसी बात में तुम में विवाद हो जाए तो उसे ईश्वर की किताब और पैगंबर की ओर पलटाओ, यदि तुम ईश्वर और प्रलय पर ईमान रखते हो। निसंदेह विवादों को समाप्त करने के लिए ये पद्धति बेहतर है और इसका अंत अधिक भला है।
اچھی عادتیں ہیں۔
دوستو، کارکرم اچھی عادتیں کی ایک انکڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور اختر رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو، پچھلے کارکرم میں ہم نے انترمکھی یا انٹروورٹ اور بہرمکھی یا ایکٹروورٹ کی وشیشتاؤں کی چرچا کی تھی۔ ہم نے الیکھ کیا تھا کہ ہم سبھی نے اپنے جیون میں انترمکھتا اور بہرمکھتا کا انوبھو کیا ہے۔ ہم سبھی کچھ حد تک بہرمکھی ہیں اور کیول ہماری بہرمکھتا کی سیما ہی ایک دوسرے سے بھن ہوتی ہے۔ سوبھاوک سی بات ہے، اگر آپ اپنے متر کی تلنا میں کم بہرمکھی ہیں تو آپ مان سکتے ہیں کہ آپ اس کی تلنا میں ادھک انترمکھی ہیں۔ دوسرے شبدوں میں، آپ کی بہرمکھتا جتنی کم ہوگی آپ اتنے ادھک انترمکھی ہو سکتے ہیں۔
انترمکھی لوگ خود کو ساماجک گتیویدھیوں سے دور رکھنا پسند کرتے ہیں۔ انترمکھی لوگوں کو خود کو پربندھت کرنے کے لیے آتم نرکشن اور سوچ وچار کا اوسر پردان کیا جانا چاہیے۔ انہیں کسی بھی حالت میں ایسی یوجناؤں میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے جس کا نتیجہ ترنت حاصل کرنا ہو، کیونکہ سمیکشا، وشلیشن اور یوجنا کے مادھیم سے چیزوں کو پربندھت کرنے میں سمے لگتا ہے۔ ان لوگوں کو کام کے لیے شانت اور شانتی پورن ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادھکانش بہرمکھی لوگوں کو بیٹھک بازی اور پارٹیوں میں شامل ہونا پسند ہے۔ یہ لوگ کاریہ کرتے ہیں، بولتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں۔ بہرمکھی لوگوں کو اکثر باہری پروسیسر کے روپ میں جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ نرنے لیتے سمے اور سمادھان نکالتے سمے باہری جانکاری اور سروتوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے دماغ پر زور ڈالنے کے بجائے اپنی کشمتاؤں اور شاریرک شکتی پر بھروسہ کر کے کام کرتے ہیں۔
بہرمکھی لوگوں کی ایک اور وشیشتا یہ ہے کہ وہ دوستوں کا نیٹورک بنانا اور سماج کے وبھن ورگوں کے بیچ بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہی کارن ہے کہ ہر کوئی سمدائے، اسکول، وشوودیالے اور کاریہ استھل میں بہرمکھی لوگوں کو بہت جلدی پہچان لیتا ہے۔ وہ الگ الگ سموہوں میں شامل ہوتے ہیں اور الگ الگ لوگوں کی بات چیت میں موجود رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ سموہوں، کلبوں اور ساتھیوں کا ایک بڑا نیٹورک تیار کرتے ہیں۔ سموہ میں اور لوگوں سے گھرے رہنے پر وہ ادھک سرکشت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اکیلے رہنے سے انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے۔
دوستو، اس سیدانتک سمجھ کے انوسار انترمکھتا اور بہرمکھتا ایک ٹائپولوجی ہونے کے بجائے ایک تار کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آسان شبدوں میں کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سبھی الگ الگ سطر پر انترمکھی اور بہرمکھی ہیں۔ اس لیے جو ویکتی منتھن کرنا پسند کرتا ہے، اسے سماجک پرستھتیوں میں رہنا اور نئے سموہوں کے ساتھ بات چیت کرنا بھی پسند ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہرمکھی ہیں لیکن بڑے سموہوں میں رہنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔
دوستو، کارکرم کے اس بھاگ میں ہم فیسیلیٹیشن اسکل اور اسے حاصل کرنے کی تکنیک پر چرچا کریں گے۔ فیسیلیٹیشن اسکل یا سویدھا کوشل والا ویکتی لوگوں کی پربھاوی ڈھنگ سے اور کشلتا کے ساتھ مدد کر سکتا ہے۔ لچیلاپن، سمے پربندھن ایسی فیسیلیٹیشن اسکل تکنیک ہے جو لوگوں کو اپنے دینک جیون میں پرگتی کرنے اور اپنے دینک جیون میں سفلتا پراپت کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کوشل کا ابھیاس کرنے اور اسے مضبوط بنانے سے نوکری کھوجنے اور نوکری ملنے کے بعد کاریہ استھل پر بھی مدد ملتی ہے۔
فیسیلیٹیشن تکنیک ایک ایسی تکنیک ہے جس کے کارن आप लोगों की प्रगति और सफलता में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। तैयारी, दिशा निर्देश, लचीलापन, सक्रियता और समय प्रबंधन फैसिलिटेशन स्किल के कुछ उदाहरण हैं। सुविधा प्रदान करने का कौशल प्रत्यक्ष प्रबंधक बनना नहीं बल्कि दूसरों को योगदान देना है।
दरअसल आप फैसिलिटेटर के रूप में अपने समूह को सुविधा तकनीकों के साथ व्यवस्थित करते हैं और एक सामान्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं जिसमें हर कोई अपनी भूमिका निभा सकता है। फिर आप बातचीत को एक सामान्य लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और लक्ष्य हासिल करने के लिए आपके समूह को जो कुछ भी चाहिए वो प्रदान करते हैं। फैसिलिटेटर का मुख्य लक्ष्य सीधे तौर पर शामिल हुए बिना भागीदारी और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करके टीम को निर्देशित करना होता है।
कार्य प्रक्रिया में फैसिलिटेटर फैसिलिटेशन के बजाय प्रबंध करने और सहायक और प्रभावित करने वाला होता है। इसलिए फैसिलिटेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समूहों और टीमों को प्रगति करने में सक्षम बनाती है। यहाँ हम इस विषय के महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा करने जा रहे हैं।
फैसिलिटेटर क्योंकि एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है इसलिए वो टीम के दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनता है और किसी संयुक्त बिंदु पर पहुंचकर समस्या का समाधान निकालता है। इसके अलावा फैसिलिटेटर समूह की प्रगति के लिए जो भी आवश्यक होता है वो करता है। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रगति के लिए समय दक्षता आवश्यक है। इसके अलावा फैसिलिटेटर वो व्यक्ति होता है जो लोगों को समूह की समस्याओं को हल करने और समूह के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो इस बारे में निष्पक्ष रहता है कि समूह अपने अंतिम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करता है। वो तब तक अपनी जिम्मेदारी निभाता है जब तक कि समूह सफलतापूर्वक परिणाम प्राप्त नहीं कर लेता।
फैसिलिटेशन तकनीकों में से एक निर्देशों का प्रबंध करना और उन्हें व्यवस्थित करना है। दिशा निर्देश समूह के सदस्यों को परियोजना की शुरुआत से ही एक सामान्य लक्ष्य रखने की अनुमति देते हैं। आमतौर पर प्रगति उस समय तेजी से होती है जब समूह के सभी सदस्य इन दिशा निर्देशों से अवगत होते हैं और उन्हें पता होता है कि फैसिलिटेटर क्या चाहता है।
फैसिलिटेशन की एक अन्य तकनीक निष्पक्षता है। निष्पक्षता का अर्थ है कि टीम वर्क में निष्पक्षता बनाए रखने की क्षमता। एक फैसिलिटेटर के रूप में तटस्थता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको एजेंडा निर्धारित किए बिना टीम का मार्गदर्शन करने की अनुमति देती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीम के सदस्य क्या चाहते हैं, आपकी टीम की सफलता आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। इसके अलावा फैसिलिटेटर लोगों को संवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे आमतौर पर प्रगति होती है। समूह के सदस्यों को प्रोत्साहित करने से सबसे शर्मीले लोग भी बातचीत में शामिल होते हैं।
फैसिलिटेशन की एक अन्य तकनीक तैयार रहना है। तैयार रहना समूह की प्रगति और सुविधा के प्रभावी कारकों में से एक है। एक फैसिलिटेटर जो खुद तैयार रहता है वो समूह को एक सामान्य लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में सक्षम होता है। लचीलापन एक अन्य तकनीक है। लचीलापन दरअसल परिवर्तन के अनुकूल ढलने की क्षमता है। जरूरत पड़ने पर फैसिलिटेटर टीम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य और मानसिकता के मद्देनजर ऐसा करता है। सक्रियता से सुनना भी सुविधा तकनीकों में से एक है और इसमें समूह के प्रत्येक सदस्य पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। लोग तब अधिक मददगार होते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात सुन रहा है। फैसिलिटेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो प्रत्येक व्यक्ति की बात सुने। सामूहिक परियोजनाओं या बैठकों के दौरान प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक फैसिलिटेटर अपने समय प्रबंध कौशल का भी उपयोग करता है।
एक बेहतरीन फैसिलिटेटर बनने के लिए आपको अपनी ताकत विकसित करने, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और फैसिलिटेशन प्रदान करने के अवसरों की तलाश करने की आवश्यकता है। अगर आप कभी किसी समूह का प्रबंधन करने की स्थिति में हों तो एक नेता की तरह कार्य करने के बजाय फैसिलिटेशन प्रदान करने वाली शक्तियों का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप संभवतः अधिक प्रगति करेंगे और अपने लक्ष्यों को अधिक सफलता से प्राप्त कर सकेंगे। इससे पहले कि आपको फैसिलिटेशन का मौका मिले, अपने कमजोर बिंदुओं को तलाश करें और उन्हें मजबूत करना बेहतर करें।
अगर आप हमेशा फैसिलिटेशन के अवसरों की तलाश में रहते हैं तो यह आपके लिए एक बेहतरीन अभ्यास हो सकता है। चाहे आप 2 लोगों की मदद कर रहे हों या 20 लोगों की, आप अपने कौशल का अभ्यास करके एक फैसिलिटेटर के रूप में सफल हो सकते हैं।
कामकाजी लोगों के लिए फैसिलिटेशन तकनीक जानना बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र में कई तकनीकें हैं जिनका उपयोग हम इस संबंध में कर सकते हैं। सामान्य तौर पर सक्रिय रूप से सुनना एक सामाजिक कौशल है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि इसे फैसिलिटेशन कौशल की महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक माना जाता है, इसीलिए अपने सहकर्मियों की बात सुनने और सभी पर ध्यान देने की पूरी कोशिश करें। अपने समूह के प्रत्येक सदस्य को सक्रिय रूप से सुनकर आप अपने सहकर्मियों के प्रति अत्यधिक सम्मान दिखा सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप उनकी बात सुन रहे हैं। कार्यस्थल पर इस कौशल का अभ्यास करने से अन्य लोग आपको अपने समूह के अगले प्रोजेक्ट के लिए एक फैसिलिटेटर के रूप में चुनने की इच्छा जताएंगे।
जब आप लगातार सुधार के बारे में सोचते हैं तो आपकी फैसिलिटेशन तकनीक मजबूत होती है। उदाहरण के लिए, जब किसी प्रोजेक्ट को वीकेंड से पहले समाप्त करने की आवश्यकता होती है तो आवश्यक प्रगति के बारे में सोचने से स्वाभाविक रूप से काम करना आसान हो जाता है। समय प्रबंधन सुविधा और प्रगति के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। उदाहरण के लिए, जब आपका प्रबंधक आपको कोई कार्य सौंपता है जिसे आपको उसी दिन पूरा करना है तो कार्य को विभाजित करें और प्रत्येक हिस्से को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए स्वयं को खास समय दें। आप अपने समय का प्रबंधन करने में जितना अधिक प्रभावी होंगे, आप उतने ही प्रभावशाली ढंग से पूरे समूह के लिए समय प्रबंधन कर सकेंगे। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
श्रोताओ, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं जहरा जैदी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। तो आइए पहले सूरह फुरकान की आयत नंबर 41 और 42 की तिलावत सुने।
وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا।
और हे पैगंबर, वे जब भी आपको देखते हैं तो आपका परिहास करते हैं और कहते हैं कि क्या ये वही हैं जिन्हें ईश्वर ने पैगंबर बनाकर भेजा है। अगर हम मूर्तियों की पूजा पर डटे न होते तो इन्होंने तो हमें अपने पूज्यों की ओर से भटका ही दिया होता। और शीघ्र ही जब वे दंड को देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि कौन अधिक पद भ्रष्ट है।
इससे पहले की आयतों में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अनेक ईश्वरवादियों के रवैये का उल्लेख किया गया था। ये आयतें भी उसी क्रम को जारी रखते हुए कहती हैं कि जब भी पैगंबर से उनका सामना होता है तो वे उनकी बातों व विचारों को सुनने और उनके बारे में विचार करने के स्थान पर उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि क्या इसी व्यक्ति को ईश्वर ने हमारा पैगंबर बनाया है, जिसके पास न तो धन है न कोई पद है और जो बचपन से ही अनाथ के रूप में बड़ा हुआ है। यदि हम अपनी मूर्तियों के प्रति वफादार न रहें तो वो शीघ्र ही हमें पद भ्रष्ट करके हमारे पूर्वजों के मत से हमें दूर कर देगा।
ईश्वर अनेकेश्वरवादियों की इस प्रकार की तर्कहीन बातों के जवाब में उनसे कहता है कि जब तुम दंड के चिन्हों को देखोगे तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि पद भ्रष्ट कौन था। तुम अपने आप को मार्गदर्शी समझते हो जबकि तुम्हारे पास मूर्ति पूजा के लिए अपने पूर्वजों के अनुसरण के अतिरिक्त कोई अन्य तर्क ही नहीं है।
इन आयतों से हमने सीखा कि जिनके पास तर्क नहीं होता वे दूसरों का परिहास करने और मजाक उड़ाने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते। ये काफिरों का हमेशा का रवैया है।
जिसमें घमंड और हठधर्म होता है वो सत्य को स्वीकार नहीं करता। इसी कारण बहुत से लोगों में कुफर का कारण एकेश्वरवादियों के तर्क की कमजोरी नहीं बल्कि स्वयं उनका हठधर्म है।
असत्य नहीं बल्कि सत्य के मार्ग पर डटे रहना मूल्यवान है क्योंकि असत्य पर आग्रही हठधर्म है।
आइए अब सूरह फुरकान की आयत नंबर 43 की तिलावत सुने।
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا।
हे पैगंबर, क्या आपने उसे देखा जिसने अपनी आंतरिक इच्छा को अपना प्रभु बना रखा है, तो क्या आप उसके मार्गदर्शन का जिम्मा ले सकते हैं?
ये आयत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संबोधित करते हुए कहती है कि काफिर और अनेकेश्वरवादी आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये उनकी आंतरिक इच्छाओं से मेल नहीं खाता। वे चाहते हैं कि जो कुछ उनका दिल चाहता है वही करें। उन्हें उस काम की अच्छाई या बुराई से कोई मतलब नहीं होता। उनके लिए बुद्धि की बात नहीं बल्कि अपनी आंतरिक इच्छाओं की पूर्ति महत्वपूर्ण है।
इस आधार पर पैगंबर को इस बात की आशा नहीं रखनी चाहिए कि जिन लोगों ने अपनी बुद्धि व प्रवृत्ति को अलग रख दिया है वे उनकी सत्य बात को सुनकर उसे स्वीकार करेंगे और वे उनका मार्गदर्शन कर सकेंगे।
इस आयत से हमने सीखा कि कुफर व अनेकेश्वरवाद की जड़ तर्क व बुद्धि नहीं बल्कि आंतरिक इच्छाएं हैं।
ईश्वर की खोज हर मनुष्य की प्रवृत्ति में मौजूद है किंतु कुछ लोग उसकी सही पहचान में कि जो अनन्य ईश्वर है गलती कर बैठते हैं।
ईमान का मूल्य उसे विवश होकर मानने में नहीं बल्कि उसके स्वेच्छा से किए गए चयन में है। अतः ईश्वरीय पैगंबर इस बात के ठेकेदार नहीं है कि जिस प्रकार से भी संभव हो लोगों को सीधे मार्ग पर ले आए।
आइए अब सूरह फुरकान की आयत नंबर 44 की तिलावत सुने।
أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا।
हे पैगंबर, क्या आप ये समझते हैं कि उनमें से अधिकतर लोग सत्य को सुनते और उसके बारे में चिंतन करते हैं? वे तो बस चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे भी अधिक पदभ्रष्ट।
یہ آیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کو سانتونا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ انیک ایشور وادیوں کے برے ویوہار اور برے کتھنوں سے دکھی نہ ہوں اور اکارن ان کے لیے نہ کڑھیں، کیونکہ وہ نہ تو اپنی بدھی سے کام لیتے ہیں کہ ستیہ کو سمجھ سکیں اور نہ ان کے پاس سننے والے کان ہیں کہ ستیہ بات کو سن کر اسے سویکار کر سکیں۔ اس درشٹی سے وہ چوپایوں کی بھانتی ہیں کہ جو نہ اپنے مالک کی بات سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس بدھی ہوتی ہے کہ جس کے آدھار پر وہ فیصلہ کر کے قدم اٹھا سکیں۔
وستوتا یدی ہم دھیان سے سوچیں تو یہ لوگ چوپایوں سے ادھک دگ بھرمت ہیں، کیونکہ چوپایوں کے پاس سوچنے سمجھنے کی شکتی نہیں ہوتی، اسی لیے وہ اس پرکار جیون بتاتے ہیں اور وہ جیسے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، جبکہ منشیوں کے پاس بدھی اور سوچنے سمجھنے کی شکتی ہے اور ان کے لیے پرگتی کا مارگ پرشست ہے، پرنتو کچھ لوگ اس سادھن سے لابھ نہیں اٹھاتے۔
قرآن مجید کافروں اور ورودھیوں کے سمبند میں بھی نیائے سے کام لیتا ہے اور ان سبھی کو ایسا نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ان میں سے ادھکانش ایسے ہیں تاکہ دھوکہ کھائے ہوئے نردوش لوگوں کو ان سے الگ کیا جا سکے۔
اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ پشو میں بدھی نہیں ہوتی کہ وہ اچھے یا برے کو سمجھے یا ستیہ و اسطیہ میں انتر کر سکے، کنتو پدبھرشٹ منشیہ بدھی رکھنے کے باوجود ستیہ اور اسطیہ کے انتر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا یا پھر سمجھنے کے باوجود اس کا انکار کر دیتا ہے۔
مارگ درشن پراپت کرنے کی راہ ستیہ کے سندیش کو سننا اور اس کے بارے میں چنتن کرنا ہے۔ ایشوری سندیش وہی باہری ترک ہے اور یدی وہ منشیہ کے کان تک پہنچ جائے تو اس ترک کا پورک بدھی ہوگی۔
جو ایشوری مارگ درشن کو سویکار کرتا ہے اسے مانویہ پرتشٹھا پراپت ہے، اور جو لوگ ستیہ کے ورودھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ایشور کی درشٹی میں وہ چوپایوں سے بھی تچھ ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ انمول باتیں، دوستوں کارکرم انمول باتیں کے ساتھ آپ کی سیوا میں حاضر ہے قائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔ آج ہم اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا کی نظر میں راجنیتک شکتی کو ویوہارک بنانے کے وشے پر چرچا کریں گے۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اسلامی سرکار کے گٹھن کی آوشکتا اور راجنیتک شکتی پیدا کرنے کو پیغمبر اسلام کی بعثت یا ان کی پیغمبری کی گھوشنا سے پراپت مولیوں کو ویوہارک بنانے کا سادھن بتاتے ہیں۔ سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان شکشاؤں کو سماج کی آستھا کے ماحول میں صحیح ارتھوں میں ویوہارک بنائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مولیہ جنتا کے ویوہار اور کرموں میں دکھائی دیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون اور نیم جو وکاس اور پرگتی کا سادھن ہے ویوہارک بنے، تو ہمیں راجنیتک شکتی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا کہتے ہیں کہ اگر راجنیتک شکتی نہ ہو تو شکتیشالی اور گنڈے لوگ کنٹرول میں نہیں آتے، گنڈوں اور سامراجوادیوں کے سینک اور دھناڈھ لوگ ان کے ساتھ پینگ سے پینگ ملاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، یعنی پیغمبری کا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اسی لیے پوتر قرآن میں کہا گیا ہے ہم نے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا کنتو کیول اس لیے کہ ایشوری آدیش سے اس کا انوسرن کیا جائے۔ یہ ہمارے پیغمبر سے سمبندھت نہیں ہے، دنیا کے سارے پیغمبروں سے سمبندھت ہے۔ Thank you. सुप्रीम लीडर कहते हैं कि ईश्वरीय दूत विभिन्न देशों में आए ताकि लोग उनका अनुसरण करें, जनता उनका अनुसरण करे। इसलिए जब वे मदीने से आए ताकि पैगंबर इस्लाम को निमंत्रण दें और उनसे आह्वान करें कि वो मदीने की ओर हिजरत कर जाएं, ठीक उसी समय पैगंबर इस्लाम से उन्होंने बैयत की। बैयत अर्थात आप लोग हमारे आदेश के अधीन होंगे, हम वहाँ केवल इसी शर्त पर आएंगे। उसके बाद जब पैगंबर इस्लाम मदीने पहुँचे तो उन्होंने जो काम सबसे पहले अंजाम दिया वो राजनैतिक और सामाजिक शक्ति का गठन करना था, अर्थात सरकार का गठन करना। इसलिए ये पैगंबर के ज़रूरी कामों में से एक काम था। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अलबत्ता पैगंबरों के बहुत ज़्यादा दुश्मन भी थे। जब सरकार का गठन होता है तो बाहरी दुश्मन भी उसमें बढ़ जाते हैं। सरकार का गठन होते ही आंतरिक दुश्मनों के अलावा बाहरी दुश्मन भी उसमें बढ़ जाते हैं, ये बात सबको मालूम है। सुप्रीम लीडर का कहना है कि इसलिए कि बाहरी दुश्मन ज़्यादा सियासत में महारथी ना हो, उनके पास राजनीतिक शक्ति भी हो तब भी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। जो भी कोई बात करता है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जब राजनीतिक सत्ता तक पहुँचे तब बाहरी दुश्मन जो न्याय का विरोध होता है, वो जो आज़ादी का मुखालिफ है, वो जो इंसान को अच्छा जीवन बिताने और स्वतंत्र जीवन गुजारने के हक का विरोधी है, निश्चित रूप से उनका विरोध किया जाता है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
फारसी साहित्य का अनमोल रत्न।
दोस्तों, कार्यक्रम फारसी साहित्य का अनमोल रत्न की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और अख्तर रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, एक ईरानी कवि हकीम अबू मोहम्मद इलियास बाद में निजामी गंजवी के नाम से मशहूर हो गए। वे 12वीं ईस्वी के ईरान के विख्यात कवियों में थे। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि निजामी गंजवी की रचनाओं में से एक का नाम मखजनुल असरार था। निजामी ने इसकी तुलनात्मक लंबी भूमिका लिखी। इस भूमिका के बाद उन्होंने अपने विचारों को कुछ लेखों के रूप में पेश किया। इन लेखों की संख्या 20 है, जिनको मकालात के नाम से जाना जाता है। हर लेख एक मकालात है जिसमें अलग अलग विषयों पर निजामी के विचार पढ़ने को मिलते हैं।
दोस्तों, हम ईरानी साहित्यकार हकीम अबू मोहम्मद इलियास निजामी गंजवी के रचना पंचगंज के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। अब हम उनकी रचना पंचगंज के दूसरे भाग को शुरू करने जा रहे हैं, जो खुसरो और शीरिन से संबंधित है। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि निजामी ने फारसी साहित्य में पाए जाने वाले बहुत सी प्रेम कहानियों में से खुसरो और शीरिन की कहानी का चयन किया। इसका एक कारण तो ये भी हो सकता है कि फारसी साहित्य में बहुत सी प्रेम कहानियों को कई बार दोहराया गया है। निजामी चाहते थे कि वे कोई ऐसी कहानी पेश करें जिसको अधिक दोहराया न गया हो।
हालांकि फारसी साहित्य के विश्वविख्यात कवि हकीम अबुल कासिम फिरदौसी के शाहनामे में ये कहानी मिलती है, लेकिन इसको विस्तार से नहीं बल्कि संक्षेप में पेश किया गया है। निजामी गंजवी को पहले से शाहनामे से विशेष प्रकार का लगाव था। उनका मानना है कि जिस समय फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था उस समय उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी। इस आयु में किसी कवि से प्रेम के बारे में कविता लिखने को अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि फिरदौसी ने शाहनामे में खुसरो और शीरीन की कहानी को ऐतिहासिक आयामों पर ध्यान केंद्रित किया। इसी के साथ उन्होंने कुछ रण क्षेत्र से संबंधित बातें भी इस कहानी में पेश की हैं।
निजामी जिस नगर में रहा करते थे उसका नाम गंजे था। उनके नगर में खुसरो और शिरीन की कहानी प्राचीन काल से प्रचलित थी। बताया जाता है कि वे लोग जो प्राचीन काल में गंजे नगर से बगदाद या फिर मक्के जाया करते थे, उन्होंने रास्ते में इस कहानी से संबंधित कुछ बातों को देखा था। खुसरो ने शाहरुद नामक जो नगर बनाया था वो यात्रियों के मार्ग में पड़ता था। इसी प्रकार से बीसुतून नामक कैरेक्टर जो इस कहानी से संबंधित बताया जाता है वो ही यात्रियों की निगाहों के सामने था।
रास्ते के पत्थरों पर खुसरो परवेज के घोड़े शब्दीज का चित्र अंकित था जो लोगों के दिमाग में कहानी को पुनर्जीवित करता था। इराक के मदायन नगर में खुसरो परवेज के महल के खंडहर उसके काल की गाथा सुनाते हैं। कसरे शीरीन नामक ये महल खुसरो परवेज की दास्तां को दिलों में जिंदा करता है। इसके अतिरिक्त फिरदौसी के शाहनामे के चरित्र उस काल के लोगों की जबान पर हुआ करते थे। आम इंसान से लेकर शासक वर्ग तक इन चरित्रों से भलीभांत अवगत थे। इस प्रकार से उसने न केवल आम लोगों को बल्कि खास लोगों को भी प्रभावित कर रखा था।
निजामी गंजवी की ये इच्छा थी कि वे शीरीन और खुसरो की प्रेम कहानी को उसी ढंग से पेश करें जिस ढंग से वो उनके नगर में प्रचलित रही है। इससे संबंधित दूसरी बातों को पेश करने के लिए शाहनामे में पाई जाने वाली बातों को अपनी रचना में लाना जरूरी था। अगर ऐसा होता तो फिर फिरदौसी के शाहनामे और निजामी की रचना की आपस में तुलना की जाने लगती। इससे बचने के लिए निजामी ने अपनी रचनाओं में गद्यात्मक दूसरे वजन चुने। ये वे गद्यात्मक वजन थे जो उनकी रचना के अनुरूप थे।
दोस्तों, खुसरो के बारे में फिरदौसी ने जो कुछ बयान किया था निजामी ने अपनी रचना में उसका उल्लेख नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहानी के केवल उसी भाग को लिया जो ऐतिहासिक वास्तविकताओं से संबंधित था। इसके अतिरिक्त उनके यहाँ इस कहानी से संबंधित जो विचार पाए जाते थे उनको उन्होंने अपनी रचना में स्थान दिया। निजामी ने ऐसा क्यों किया इसका कारण बताते हुए उन पर शोध करने वाले कहते हैं कि इसकी दो वजहें हो सकती हैं। पहला कारण तो यह है कि निजामी ने इसको दिल की गहराइयों से लिखा है। उन्होंने अपनी प्रेमिका आफाक की मृत्यु के बाद भाव विभोर होकर ये रचना लिखी।
दूसरा कारण ये कि निजामी के काल के शासक और महान लोग इसी शैली को पसंद किया करते थे। प्राचीन अजरबैजान के शासक अताबक जहान पहलवान को साहित्य और संगीत से लगाव था और उसको खुसरो और शिरीन की कहानी का पता था। इस बारे में उससे पहले से ही उन्होंने पढ़ रखा था। यही कारण है कि अपनी रचना को पूरा करने के बाद निजामी गंजवी ने उसको प्राचीन अजरबैजान के शासक को भेंट किया। खुसरो और शिरीन की कहानी निजामी के लिए कई आयामों से महत्व रखती थी।
एक तो ये था कि उनके काल के लोगों के बीच ये बहुत आम थी, और दूसरे ये कि ये कहानी उनको उनकी धर्मपत्नी आफाक की याद दिलाती थी जिनका निधन हो चुका था। इसको पढ़कर उनको अपने विगत के दिन याद आते थे जिनको सोचकर वे उनमें डूब जाया करते थे। ईरान के साहित्य एवं इतिहास के उस्ताद जर्रीन कूप के अनुसार अपनी पत्नी की अचानक मौत से निजामी बहुत दुखी थे। वे अधिकांश समय उनके वियोग में परेशान रहा करते थे। खुसरो और शीरीन की कहानी का उल्लेख करके निजामी अपनी पुरानी यादों को दोहराते थे। इसी के साथ वे अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से दूसरी बातों से बचाना चाहते थे।
अपनी रचना को पेश करने में निजामी ने इस प्रकार का व्यवहार किया कि उनके कुछ मित्रों ने उनकी आलोचना भी की। हालांकि इन आलोचकों को ये बात पता नहीं है कि धार्मिक प्रवृत्ति रखने वाले कवि इस प्रकार की प्रेम कहानियों को आनंद के लिए नहीं बल्कि इसके माध्यम से वे अपनी साहित्यिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कहते हैं कि एक बार निजामी के दोस्त उनके पास आए और उन्होंने निजामी को यह समझाने का प्रयास किया कि तुम इस प्रकार की रचनाओं को पेश करने से बचो क्योंकि ये सही नहीं है।
दोस्तों, जब निजामी गंजवी ने अपने दोस्त को शीरीन और खुसरो की कहानी के कुछ अन्य भाग सुनाए तो वे इससे बहुत प्रभावित हुए। निजामी के मित्र इससे इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपनी इस रचना को पूरा करो। इसी के साथ उन्होंने निजामी को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि तुम इस रचना को पूरा करने के बाद यहां से चले जाओ क्योंकि गंजे में कोई इसके महत्व को समझने वाला नहीं है। अगर तुम इसको कहीं बाहर जाकर पेश करोगे तो इससे तुम्हारी ख्याति और ज्यादा होगी और तुमको दूर दूर तक पहचाना जाएगा।
ये सुनने के बाद निजामी ने उनको शांत किया और कहा कि मुझको दरबारों के चक्कर लगाना और शासकों की हाँ में हाँ मिलाना पसंद नहीं है। मैं अपने ही नगर में रहना चाहता हूँ। निजामी ने कहा था कि मैं बाहर की ख्याति से अच्छा इस बात को समझता हूँ कि अपने ही नगर में कहीं कोने में एकांतवास में जिंदगी गुजारूं। निजामी गंजवी ने खुसरो और शिरीन की जो कहानी अपने शब्दों में बयान की है उसको इतिहास के आधार पर लिखा है। पहले उन्होंने खुसरो के पिता और फिर उसके बाद उनके जन्म से संबंधित बातें बताई हैं।
जब हुरमुस को अपने पिता के स्थान पर राजा बनाया गया तो उसने ही अपने पिता की भांति शासन करना शुरू किया। उसकी अभिलाषा थी कि उसके यहाँ कोई बेटा जन्म ले। जब उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम खुसरो रखा गया। खुसरो बहुत ही अच्छे वातावरण में पल बढ़ रहा था। 10 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते उसने घुड़सवारी सीख ली थी। 14 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते उसने अपने गुरु बुजुर्ग उम्मीद से अपने काल के प्रचलित ज्ञान को सीख लिया था।
हुरमुस ये चाहता था कि उसके बेटे खुसरो को लोग प्यार करें और उसकी लंबी आयु के लिए दुआ किया करें। इसको व्यवहारिक बनाने के लिए उसने कसम खाई थी कि वो हमेशा न्याय से काम लेगा। इसी के साथ उसने दूसरों को भी न्याय के साथ काम करने का आदेश दिया था। निजामी गंजवी ने हुरमुस के व्यापक न्याय को ठीक से समझाने के लिए एक कहानी पेश की है। निजामी की इस कहानी को हम कार्यक्रम के अगले हिस्से में पेश करेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं।
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
وگیان کی ڈگر۔
دوستو، کارکرم وگیان کی ڈگر کے گنے کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور سید نسم کا سلام سویکار کیجیے۔
آرسینک اور ہانیکارک پردوشکوں کی ایک شرنکھلا کو پوری طرح سے ہٹانے اور پانی کے لابھکاری پدارتھوں کو سنرکشت کرنے کی کھمتا والا گھریلو اور اودیوگک واٹر فلٹر ایک ایرانی نالج بیس کمپنی دوارا بنایا گیا تھا۔ اس کمپنی کے سی ای او کے انوسار پانی میں 700 سے ادھک پرکار کے ہانیکارک رسائنوں کی پہچان کی گئی ہے جو مکھیہ روپ سے اودیوگک کچروں اور شہری سیور کے پرویش اور بہتے اور بھومیگت جل میں ڈٹرجنٹ اور کیٹناشکوں کے پرویش کے کارن ہوتے ہیں۔
حالانکہ آرسینک جیسی اشدھیوں کی اپستھتی سے سواد اور گند میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ پانی میں سب سے خطرناک تتوں میں سے ایک ہیں۔ سویکار سیما سے ادھک بھاری دھاتوں وشیش روپ سے آرسینک، پارا یا کرومیم کی ماترا کے ساتھ پینے کے پانی کا سیون مانو سواستھ کے لیے ہانیکارک ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ کینسر کے خطرے کو کافی بڑھاتا ہے۔
اس نالج بیس کمپنی کے مینیجر کے انوسار ایکوسیو تکنیک، جو پانی سے خراب پدارتھوں کو ہٹانے کا سب سے پربھاوی طریقہ ہے، اس کمپنی دوارا وکست کیا گیا تھا اور اس کا اپیوگ گھر، کارالیہ، گرامین اور شہری آکار میں جل شودھن اپکرنوں میں کیا گیا ہے۔ یہ اپکرن مانوک گڑوتا کے ساتھ پانی کو شدھ کرتے ہیں اور اسے فلٹر کر کے پریوگ کرنے میں آسان بناتے ہیں۔ ادھکانش موجودہ اپکرنوں میں خطرناک تتووں کو پوری طرح سے ہٹانے، پریاورن کے ساتھ انوکولتا کی کمی، جٹل اپکرنوں کی آوشیکتا، پانی میں اپیوگی کھنیجوں کے ایک مہتوپورن حصے کو ہٹانے اور پردوشت جل کی اسویکار رہے ماترا کا اتپادن جیسی سمسیائیں ہیں۔
شوتکرتا کے انوسار ایکوسیو تکنیک میں ایک بہت ہی کفایتی، پربھاوی اور سرل ودھی کا اپیوگ کیا گیا ہے، جس کی پرنالی کا پیٹنٹ کرایا گیا ہے، جو پانی میں موجود خطرناک تتووں جیسے آرسینک اور بھاری دھاتوں کو دور کرنے کی کھمتا رکھتی ہے اور کیلشیم سہت اس کے اپیوگی پدارتھوں کو ختم نہیں کرتا۔ گھر میں آرسینک اور ہانیکارک پردوشکوں کی ایک شرنکلا کو ہٹانا، پانی کی کٹورتا اور ٹھوس پدارتھوں کو کم کرنا، پوری طرح سے سوچالت اور نرنتر سنچالن رسوئی کی دیوار پر ستھاپت کرنے کی کھمتا اور سنچالن میں آسانی، ایک چھوٹے سے کاریہستھان کے لیے اپیوکت گراہک کی پسند کا ڈیزائن اور رنگ چننے کی سمبھاونا، پانی کی بربادی کو روکنا اور کم لاگت کے ساتھ گھریلو واٹر پیوریفائر میں ایکوسیو تکنیک کے فائدوں میں سے ہیں۔
دوستو، آرسینک کے بارے میں سنکشپ میں جاننے کا پریاس کرتے ہیں۔ آرسینک ایک گندھین اور سوادھین اپ دھاتو ہے جو زمین کی سطح کے نیچے پرچور ماترا میں اپلبدھ ہے۔ یہ رسائن وگیان پیریوڈک ٹیبل میں نائٹروجن، فاسفورس، اینٹیمنی اور بسمتھ سہت گروپ وی اے کا سدسیہ ہے۔ آرسینک اور اس کے یوگک روے دار پاؤڈر اور ایمورفس یا کانچ جیسی اوستھا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سامانیہ تھا چٹان، مٹی، پانی اور وایو میں کافی ماترا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دھرتی کی طرح کا پرچور ماترا میں پائے جانے والا 26 تتو ہے۔
اگر ماترا کو آدھار مانا جائے، آرسینائٹ اے ایس 3 کو آرسینک کا سب سے زہریلا سوروپ مانا جاتا ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ گمبھیرتا کے معاملے میں اے ایس 3 اور اے ایس 5 میں زہریلا پن سمان ہوتا ہے۔ پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ آرسینک کا میتھائلیٹڈ سوروپ کم زہریلے ہوتے ہیں، مگر اب دیکھا گیا ہے کہ کافی زہریلے ہوتے ہیں۔
آرسینک کے وبھن پرکٹ سروت کون کون سے ہیں؟ اس واتاورن میں اپلبدھ آرسینک کے پرکٹ سروت میں پراکرتک اور مانو جنت سروت اس طرح ہے۔ پراکرتک آرسینک یکت گاد سے بھوجل میں آرسینک کا رساؤ، مٹی میں آرسینک کا رسنا اور گھلنا، مانو جنت کرشی رسائن، دیمک رودھی جیسے رسائنک تتو، اودیوگک سروت، کھنج سنشودھن، खनिज संशोधन के अम्ल अपशिष्ट का निस्तार, जैव ईंधन का जलना आदि।
आर्सेनिकोसिस क्या है? आर्सेनिक मानव शरीर के लिए जहरीला असर पैदा करता है। आर्सेनिक पॉइजनिंग को चिकित्सीय भाषा में आर्सेनिकोसिस कहते हैं। ये शरीर में उपलब्ध आवश्यक एंजाइम पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है और जिसकी वजह से शरीर के बहुत से अंग काम करना बंद कर देते हैं। अंत में इसकी वजह से रोगी की मौत हो जाती है।
आर्सेनिक मानव शरीर को किस तरह प्रभावित करता है? पीने के पानी में मौजूद आर्सेनिक हाथों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, वहां से रक्त वाहिनियां इन्हें विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। शरीर में अवशोषित आर्सेनिक की मात्रा का पता नाखून और बाल के नमूनों से लगाया जा सकता है। सामान्यतः मानव शरीर आर्सेनिक के बहुत कम मात्रा का आदि होता है जो मूत्र के जरिए बाहर निकल जाता है। अगर अधिक मात्रा में आर्सेनिक का सेवन होने लगे तो ये शरीर के अंदर ही रह जाता है और आर्सेनिक शरीर पर तरह तरह के नकारात्मक असर छोड़ता रहता है। पर आर्सेनिक कैसे और क्या असर करता है, अभी बहुत काम होना बाकी है।
पेयजल में आर्सेनिक कहाँ से और कैसे आता है? क्योंकि ये वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद है। इसके अलावा कुछ कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के कारण भी ऐसा हो जाता है। ये भूजल अथवा सतही जल में घुल जाता है और हमारे पेयजल में आ जाता है। आर्सेनिक के सेहत पर प्रभाव क्या क्या होते हैं? आर्सेनिक की वजह से कई बीमारियाँ होती हैं और कई बीमारियों का खतरे की गंभीरता बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर त्वचा का फटना, केराटोइस और त्वचा का कैंसर, फेफड़े और मूत्राशय का कैंसर और नाड़ी से संबंधित रोग आदि। दूसरी परेशानियां जैसे मधुमेह, दूसरे अंगों का कैंसर, संतानोत्पत्ति से संबंधित गड़बड़ियां आदि के मामले भी देखे गए हैं और बीमारियों पर शोध कार्य अभी जारी है।
जमीनी अनुभव बताते हैं कि आर्सेनिक युक्त जल के कुछ सालों के लगातार सेवन के बाद आर्सेनिक संबंधित त्वचा रोग नजर आने लगते हैं। अगर पानी में आर्सेनिक की मात्रा 500 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से अधिक हो तो ये संभावना काफी अधिक हो जाती है। हालांकि किसी परिवार में ऐसा भी देखा गया है कि एक व्यक्ति को छोड़कर सारे प्रभावित हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह हम जान नहीं पाए। क्या सतही जल और बारिश का जल और कुएं का जल आर्सेनिक मुक्त पेयजल स्रोत के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और कैसे?
बैक्टीरिया और दूसरे जहर के समुचित शुद्धिकरण के बाद इन स्रोतों के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अधिकतर कुएं आर्सेनिक मुक्त होते हैं, हालांकि कुछ कुओं के पानी में आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है। सतही जल अमूमन आर्सेनिक मुक्त होते हैं। बारिश का जल हमेशा आर्सेनिक मुक्त होता है। क्या उबालने से पानी से आर्सेनिक हटाया जा सकता है? नहीं, उबालकर आर्सेनिक को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि ये वोलेटाइल पदार्थ नहीं है, तो उबालने से इसकी सांद्रता बढ़ जाने का ही खतरा रहता है।
कोई कैसे जान सकता है कि उसका ट्यूबवेल आर्सेनिक दूषित है या नहीं? आर्सेनिक का कोई अलग स्वाद, रंग या गंध नहीं होता। सही तरीके से जमा करने और संरक्षित करने के बाद पानी के नमूने को मान्यता प्राप्त एनालिटिकल लैब में जांच कराकर ये पता लगाया जा सकता है। प्रमाणित फील्ड किट के जरिए भी ये मालूम किया जा सकता है, मगर इन किटों से सिर्फ इशारा मिलता है, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते।
फसलों के जरिए कैसे आर्सेनिक खाद्य चक्र में शामिल हो जाता है? जब खेतों की सिंचाई आर्सेनियुक्त पानी से की जा रही हो तो आर्सेनिक का अकार्बनिक स्वरूप पौधों में अवशोषित हो जाता है और इस तरह आर्सेनिक खाद्य चक्र में शामिल हो जाता है। क्या भोजन में आर्सेनिक हमेशा खतरनाक होता है? अगर आर्सेनिक अकार्बनिक स्वरूप में मौजूद हो तो ये जहरीला हो सकता है, जैसे आर्सेनाइट और आर्सेनेट। मगर आर्सेनिक के कार्बनिक स्वरूप जैसे आर्सेनो बेटाइन, आर्सेनोकोलिन, आर्सेनो सुगर जहरीले नहीं होते।
क्या आर्सेनिक अजन्मे बच्चे को भी प्रभावित कर सकता है? हालांकि अब तक इस बात के प्रमाण नहीं मिले हैं कि आर्सेनिक गर्भवती महिला या उसके शिशु को प्रभावित कर सकता है, मगर पशुओं के साथ किए गए अध्ययन में पाया गया कि बीमार करने की क्षमता के बराबर आर्सेनिक के डोज गर्भवती मादाओं को देने से कम वजन वाले बच्चों का जन्म गर्भस्थ शिशु में विकृति या उसकी मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हुआ, हमें इजाजत दीजिए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔